लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार वित्त प्रभारी सरकारों के साथ मिलकर वित्तीय क्षेत्र को उचित ढंग से विनियमित कर नागरिकों को इसके खतरों से बचाए रखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन के संत दामासुस प्रांगण में उपस्थित सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
मेरी फ्रेटेली सोरेल्ले बोंजोर्नो। C'è una contestazione radicale alla preghiera che deriva da un'osservazione che tutti facciamo. Noi preghiamo, domandiamo, eppure a volte le nostre preghiere sembrano rimanere inascoltate.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हमारी प्रार्थना में एक मौलिक अड़चन है जिसे हम अपने अवलोकन में पाते हैं। हम सभी प्रार्थना विनय करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना कभी कभी नहीं सुनी जाती है। हमने जो अपने लिए दूसरों के लिए मांगा है वह पूरी नहीं होती है। हमने इसका अनुभव कई बार किया है। यदि हमारी प्रार्थना किसी नेक बातों के लिए होती, जैसे कि किसी बीमार व्यक्ति की चंगाई या युद्ध विराम हेतु, और वह नहीं सुनी जाती तो हमें धक्का लगता है। उदाहरण के लिए, हम युद्धों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध हैं। हम यमन सीरिया के बारे में सोचते हैं, जो वर्षों से युद्ध ग्रस्त हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन वे समाप्त नहीं होते हैं। यह कैसे हो सकता है? ऐसी स्थिति में कुछ लोग प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है। यदि ईश्वर पिता हैं, तो वे क्यों हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं? वे जो अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी चीजें देने का वचन देते हैं, हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं करते हैं? हमने अपने मित्र माता पिता की बीमारी से चंगाई हेतु प्रार्थना की और फिर भी वे मर गए। ईश्वर ने हमारी नहीं सुनी, यह हम सबों का अनुभव रहा है। कलीसिया की धर्म शिक्षा इस संदर्भ में हमें एक अच्छा संक्षेपण प्रस्तुत करती है। यह हमें अपने सच्चे विश्वास का परित्याग करने हेतु नहीं, अपितु उसे एक चमत्कारिक संबंध में परिणत करने को प्रेरित करती है। प्रार्थना कोई जादुई छड़ी नहीं है, यह प्रभु के साथ एक वार्ता है, संत पापा ने कहा। वास्तव में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आशा भरे जोखिम में पड़ जाते हैं कि प्रभु हमारी सेवा करें, ना कि हम उनकी सेवा। ऐसी प्रार्थना सदैव मांग भरी होती है, जो सारी चीजों को हमारी इच्छा अनुसार संचालित करना चाहती है, जहां हम अपनी योजना के अलावे दूसरी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। यीशु वहीं दूसरी ओर हे पिता की प्रार्थना में हमें एक बड़ी शिक्षा देते हैं। यह प्रश्नों की प्रार्थना है जिसे हम ईश्वरीय मनोभावों में उद्घोषित करते हैं। उनमें हम हमारी योजना की पूर्ति नहीं, लेकिन दुनिया में ईश्वरीय योजना पूरा होने की चाह रखते हैं। हम सारी चीजों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे, संत पापा ने कहा।
El apóstol Pablo ci ricorda che noi non sappiamo nemmeno cosa sia conveniente domandare.
संत पौलुस हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम यह नहीं जानते कि किन चीजों की मांग हमारे लिए उचित है। हम अपनी इच्छाओं, जरूरतों और केवल अपनी आवश्यकताओं की मांग करते हैं। संत पौलुस हमें कहते हैं कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नम्र होने की जरूरत है, क्योंकि यह प्रार्थना का प्रथम मनोभाव है। हमें प्रार्थना के पहले यह पूछने की जरूरत है कि हमारे मनोभाव क्या हैं। जब हम प्रार्थना करें तो नम्रता के भाव में प्रार्थना करें, जिससे हमारे शब्द सही में प्रार्थना बने, ना कि व्यर्थ की बात जिसे ईश्वर अस्वीकार करते हैं। एक बैनर में यह लिखना सहज है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। बहुत से हैं जो इस बात का ख्याल करते हैं कि ईश्वर उनके साथ हैं, लेकिन कुछ हैं जो इस बात का ध्यान नहीं देते कि क्या वे ईश्वर के साथ हैं। प्रार्थना में ईश्वर हमें बदलते हैं, ना कि हम ईश्वर के विचारों को बदलते। मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, लेकिन तू हे प्रभु मेरे हृदय को परिवर्तित कर, जिससे मैं जो उचित है उसकी कामना कर सकूं। मेरी आध्यात्मिकता हेतु क्या उत्तम है मुझे वही प्रदान कर, यही हमारे लिए नम्रता है। संत पापा ने कहा, यद्यपि प्रार्थना में ठोकर बना रहता है, क्योंकि लोग निष्ठावान हृदय से प्रार्थना करते हैं, जब वे ईश्वरीय राज्य को ध्यान में रखकर चीजों की मांग करते। एक माता अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं? इस सवाल का उत्तर पाने हेतु हमें शांतिमय तरीके से धर्म ग्रंथ के वचनों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम यीशु के प्रार्थना में जीवन का वृतांत पाते हैं। बहुत से लोग जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप में बीमार थे, चंगाई हेतु प्रार्थना की। संत पापा ने कहा,
क्या बोलते ला रिस्पोस्टा दी येशु ए इमेडियाटा इनवेचे इन क्वालकी अल्ट्रो कासो एसा ए डिफेरिटा नेल टेम्पो।
कभी कभी हम येशु को तुरंत उत्तर देता पाते हैं, वहीं कुछ परिस्थितियों में वे देर करते हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर जवाब नहीं देते हैं। हम उस कनानी नारी के बारे में सोचें जो अपनी बेटी के लिए विनय की भीख मांगती है। उसने अपनी प्रार्थना को निरंतर जारी रखा। उसे यीशु की खरी खोटी सुननी पड़ी। बच्चों की रोटी को पिल्लों के लिए फेंकना उचित नहीं है, लेकिन उस नारी को इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल अपनी बेटी के स्वास्थ्य की चिंता थी। वह दृढ़ बनी रही और कहती है, हाँ पिल्ले भी मेज से गिरी चीजों को खाते हैं। यह यीशु को पसंद आया। हम अपनी प्रार्थना में साहसिक बने रहें। संत पापा ने कहा कि हम उस कोढ़ ग्रस्त व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो अपने चार मित्रों के द्वारा यीशु के पास लाया गया। यीशु पहले उनके पापों को क्षमा करते और उसे शारीरिक चंगाई प्रदान करते हैं। कभी कभी मुसीबतों का समाधान एकदम तुरंत नहीं होता है। हमारे जीवन में भी हम प्रत्येक इस बात को अनुभव करते हैं। कितनी बार हमने एक कृपा एक चंगाई की मांग की और कुछ नहीं हुआ, लेकिन समय के अनुसार हमारी योजना के मुताबिक नहीं अपितु ईश्वरीय योजना में चीजें ठीक हो गईं। ईश्वर का समय हमारा समय नहीं है। इस संदर्भ में जैरुस की बेटी की चंगाई हमारा ध्यान आकर्षित कराती है। एक पिता की बेटी मृत्यु शैया में पड़ी है और वह यीशु से सहायता की मांग करता है। स्वामी तुरंत स्वीकार करते हैं, लेकिन राह में एक दूसरी चंगाई होती है और तब यह खबर आती है वह लड़की मर गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी चीजें खत्म हो गई हों, परंतु यीशु उस पिता से कहते हैं, डरिए नहीं, केवल विश्वास कीजिए। विश्वास करना जारी रखिए, क्योंकि यह विश्वास है जो प्रार्थना को मजबूत बनाए रखता है। वास्तव में यीशु मरी हुई बच्ची को जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब जैरुस को अंधकार में सिर्फ विश्वास के लौ से चलना था। प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। हम इस कृपा के लिए निवेदन करें। यीशु सुसमाचार में कहते हैं कि विश्वास पर्वत को हटा सकता है। हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। संत पापा ने कहा,
Anche la preghiera che Gesù rivolge al Padre nel Getsemani sembra rimanere inascoltata. Padre, se possibile, allontana da me questo che mi aspetta.
स्वयं यीशु की प्रार्थना जिसे वे गेतसेमानी बारी में अपने पिता के पास की अनसुनी दिखाई पड़ती है। पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। ऐसा लगता है मानो पिता उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। बेटे को दुख का प्याला पूरी तरह पीना पड़ा, लेकिन शनिवार अध्याय की समाप्ति नहीं रही, क्योंकि तीसरे दिन रविवार को वे मृतकों में से जी उठे। हम इस बात की याद करें कि बुराई अंतिम दिन का स्वामी नहीं है, जहां भोर के पहले हम रात्रि का अनुभव करते हैं। उस अंतिम दिन में शत्रु हमारी परीक्षा लेता और हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि उनकी विजयी हुई है। बुराई अंतिम दिन का स्वामी नहीं है, बल्कि अंतिम दिन का स्वामी ईश्वर है, क्योंकि वह ईश्वर का है। उस दिन मानव पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करते हैं और उनकी चाह पूरी होगी। हम मानवीय धैर्य में ईश्वर की उस कृपा अंतिम दिन का इंतजार करते हैं। बहुत बार अंतिम समय बुरा होता है, क्योंकि मानव का दुख खराब है, लेकिन ईश्वर वहाँ है और अंतिम दिन में वे सारी चीजों का समाधान करेंगे। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान प्रार्थना पर धर्म शिक्षा दी। इसी के मद्देनजर संत पापा ने दो ट्वीट कर विनम्र होकर प्रार्थना करने और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखने हेतु प्रेरित किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने लिखा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विनम्र होने की आवश्यकता होती है, ताकि हमारे शब्द वास्तव में प्रार्थनाएं हों, न कि केवल बेकार की बातें जिन्हें ईश्वर अस्वीकार करते हैं। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, पवित्र आत्मा ईश्वर का उपहार है जो हमें स्वतंत्र व्यक्ति बनने में मदद करता है, जो प्यार करना चाहते हैं और प्यार करना जानते हैं, जो समझते हैं कि जीवन उन चमत्कारों की घोषणा करने का एक मिशन है जिसे ईश्वर उनमें पूरा करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। उधर उत्तरी चीन में अधिकारियों ने वाटिकन द्वारा नियुक्त कैथोलिक धर्माध्यक्ष, उनके साथ पुरोहितों और सेमिनारियों को गिरफ्तार किया है, जिसे कम्युनिस्ट देश में भूमिगत कैथोलिक कलीसिया पर नए सिरे से कार्यवाही के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। धार्मिक मामलों पर देश के दमनकारी नए नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में पुरोहितों और सेमिनारियों को हिरासत में लेने के एक दिन बाद पुलिस ने 21 मई को हेनान प्रांत के शिनजियांग धर्म प्रांत के 63 वर्षीय बिशप जोसेफ झांग वीजू को गिरफ्तार किया। वाटिकन द्वारा धर्माध्यक्ष झांग को 1991 में गुप्त रूप से नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को चीन में कैथोलिक कलीसिया के राज्य संरेखित धर्माध्यक्ष सम्मेलन BCCC और चीनी कैथोलिक देशभक्ति संघ CCPA द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। चीन ने पुरोहितों के लिए नियमों का एक नया सेट लागू किया जो इसी महीने लागू हुआ। इस नियम के तहत सभी पुरोहितों को कैथोलिकों की सेवा करने के लिए राज्य के साथ पंजीकरण करना है और कैथोलिक अपने धर्माध्यक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से चुन सकते हैं। नया नियम चीन वाटिकन समझौते की उपेक्षा करता है, जो तथा कथित तौर पर आपसी समझौते से धर्माध्यक्षों की नियुक्ति पर सहमत हुए वाटिकन के जनादेश के बिना कैथोलिक धर्माध्यक्षों की नियुक्ति करने वाले राज्य के संघर्ष को समाप्त कर दिया। धर्माध्यक्ष और पुरोहितों की गिरफ्तारी तब हुई जब धर्म प्रांत ने एक परित्यक्त कारखाने की इमारत को सेमिनरी के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वाटिकन अनुमोदित धर्माध्यक्ष की अध्यक्षता में धर्म प्रांत भूमिगत कलीसिया का हिस्सा है। स्थानीय कैथलिकों का कहना है कि नियमों का उद्देश्य पुरोहितों के राज्य अनुमोदित डेटाबेस के बाहर काम करते हुए अपने पुरोहितों को अपराधी बनाकर और गिरफ्तार करके भूमिगत कलीसिया को समाप्त करना है। और दुनिया भर में बौद्ध समुदाय आज बुधवार 26 मई को वैसाख का पर्व मना रही है। इसे बुद्ध दिवस भी कहा जाता है क्योंकि यह गौतम बुद्ध के जन्मदिन का प्रतीक है। हालांकि यह पर्व बुद्ध के जीवन के सभी तीन महत्वपूर्ण चरणों का जश्न मनाता है, उनका जन्म, ज्ञान और निधन। कहा जाता है कि सभी पांचवें महीने के पूर्णिमा को हुए थे। हर साल वाटिकन के अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बनी परम धर्मपीठीय परिषद बौद्धों को एकजुटता और भाईचारे का संवाद बढ़ाने के लिए अभिवादन का संदेश भेजती है। इस वर्ष अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बने परम धर्मपीठीय परिषद की ओर से अध्यक्ष कार्डिनल एंजल आयुसो ने बौद्ध समुदायों को वैशाख पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पत्र में लिखा कि गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निधन का यह वार्षिक त्योहार दुनिया भर के बौद्धों के दिलों में खुशी, शांति और आशा लाए। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने मंगलवार को मध्य पूर्व की यात्रा शुरू की। मिस्र की मध्यस्थता के बाद इसराइल और हमास के बीच संघर्ष को रोक दिया गया। इसराइल और हमास के बीच शत्रुता शुरू हुए अभी दो सप्ताह से अधिक का समय हुआ है, जिसके कारण दोनों पक्षों को मौत और विनाश का सामना करना पड़ा। मंगलवार को इसराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने मिस्र द्वारा मध्यस्थता वाले युद्ध विराम को और सुदृढ़ करने की आशा व्यक्त की है। हालिया हिंसा ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। यह आशा की जा रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का मिशन फिलिस्तीन इनक्लेव को मानवीय सहायता में तेजी लाने में मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि ब्लिंकन इसराइल की सुरक्षा के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता के बारे में इसराइल के नेताओं के साथ मिलेंगे, साथ ही फिलिस्तीनियों के साथ संबंध बहाल करने का भी प्रयास करेंगे। राज्य सचिव के एजेंडे में यरूशलेम में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के साथ बातचीत और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मुहम्मद अब्बास के साथ वेस्ट बैंक शहर रामल्लाह में बैठक शामिल है। और म्यांमार के हजारों लोग, जिनमें अधिकांश ख्रिस्तीय हैं, भारत के सीमावर्ती मिजोरम राज्य की ओर भाग रहे हैं क्योंकि बौद्ध बहुल राष्ट्र में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना की कार्रवाई जारी है। मिजोरम राज्य ने नई दिल्ली में संघीय सरकार को आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि लगभग 16,000 म्यांमार शरणार्थी अब राज्य में रह रहे हैं, जो पड़ोसी म्यांमार के चिन राज्य से हैं। भारत आए अधिकांश शरणार्थी मिजोरम में मिजो लोगों के साथ एक जातीय संबंध साझा करते हैं और ख्रिस्तीय बहुल राज्य के लोगों के साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं। मिजोरम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एच रामावारी ने भारत के विदेश मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा कि म्यांमार के 15,438 लोगों ने मिजोरम में शरण ली है। मिजोरम में म्यांमार के शरणार्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजनयिक और राजनीतिक मुद्दों के कारण भारत सरकार ने म्यांमार से आने वाले लोगों को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संघीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में चार पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों को म्यांमार के शरणार्थियों का स्वागत नहीं करने का निर्देश दिया था। संघीय सरकार ने एक उग्रवादी विरोधी कार्रवाई बल के पैरा कमांडो को सीमा सील करने, म्यांमार से प्रवेश को रोकने का भी निर्देश दिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।